السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں کے بارے میں بدھ کو ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں قیام امن کے لیے ہونے والی امریکی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. خبر رسان ادارے رائٹرز نے وائٹ ہاؤس کے ایک اعلامیے کے حوالے سے بتایا ہے کہ بدھ ہی کو صدر ٹرمپ نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سے بھی فون پر گفتگو کی, جبکہ دونوں رہنماؤں نے طالبان کی طرف سے تشدد میں کمی کرنے کی اہمیت پر اتفاق کیا. وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں قیدیوں کی رہائی کے لیے بات چیت جاری رہنے پر بھی اتفاق کیا. صدر ٹرمپ نے قطر اور پاکستان کی قیادت سے ایک ایسے وقت میں گفتگو کی ہے جب حال ہی میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے اسلام آباد کا مختصر دورہ کیا تھا, جبکہ اس سے قبل انہوں نے دوحہ میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی تھی. زلمے خلیلزاد کا پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کا محور امریکہ طالبان امن معاہدے پر عمل درآمد میں حائل مشکلات کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا تھا. تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کی پاکستان کے وزیر اعظم اور قطر کے امیر سے بات چیت کا محور اگرچہ کرونا وائرس تھا, لیکن اس وبا کے ساتھ جس دوسرے معاملے پر بات ہوئی وہ افغان امن عمل تھا جو بظاہر تعطل کا شکار ہے. اور اب پاکستان اور دنیا بھر میں کرونا وائرس کے بارے میں ایک رپورٹ. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 15 افوات ہوئی ہیں اور 742 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 224 ہو گئی ہے. کرونا مریضوں کی تعداد 10,513 ہے اور 2,337 متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں. پنجاب کی حکومت نے ذخیرہ اندوزوں کو سخت سزائیں دینے کے لیے آرڈیننس نافذ کر دیا ہے. افغانستان کی وزارت صحت نے 7 صوبوں میں کرونا وائرس کے نئے 50 کیسز کی اطلاع دی ہے, جس کے بعد افغانستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 1,226 ہو گئی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن پر عارضی پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں. امریکہ میں مریضوں کی تعداد 8.5 لاکھ اور اموات 47,500 ہو گئی ہیں. امریکی ریاست نیو یارک میں 20,000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 26 لاکھ ہو گئی ہے. ہلاکتوں کی تعداد 1,83,000 سے زیادہ ہے. عالمی ادارے صحت کے یورپ میں قائم دفتر کے سربراہ نے کہا ہے کہ خطے میں کرونا وائرس سے ہونے والی زیادہ تر ہلاکتیں نرسنگ ہومز میں ہوئی ہیں. انہوں نے صورتحال کو ناقابل تصور سانحہ قرار دیا. جمعرات کو عالمی ادارے صحت کے یورپ کے لیے ڈائریکٹر ڈاکٹر ہینس کلوچ نے کہا کہ معمر افراد کی رہائش گاہوں پر کرونا وائرس کے اثرات دیر پا ہوں گے, جو بہت تشویشناک ہے. یورپ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد لاکھوں میں ہے, لیکن اب یورپی ممالک میں وبا کی شدت کم ہو رہی ہے. یورپ میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملک اٹلی, فرانس اور اسپین ہیں. اٹلی میں کرونا وائرس سے 25,000, اسپین میں 22,000 اور فرانس میں 21,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں. برطانیہ میں کرونا وائرس کے 1,34,000 سے زائد مریض ہیں, جبکہ 18,000 سے زائد افراد لقمے اجل بن چکے ہیں. دوسری جانب شمالی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک بھر میں اب تک کرونا وائرس کا ایک بھی مریض سامنے نہیں آیا ہے. شمالی کوریا کے اس دعوے پر ماہرین صحت شبہات کا اظہار کر رہے ہیں. پیونگ یانگ نے عالمی ادارے صحت کو بتایا ہے کہ انہوں نے 17 اپریل تک کرونا وائرس کے 740 ٹیسٹ کیے تھے, جو تمام کے تمام منفی پائے گئے ہیں. افغان حکومت نے مقدس مہینے رمضان میں جو جمعے سے شروع ہو رہا ہے عارضی فائر بندی کی اپیل کی ہے, جس پر طالبان نے فی الوقت رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ باغی گروپ ممکنہ طور پر حکومتی فورسز کے خلاف حملے جاری رکھے گا. منگل کے روز ایک پریس کانفرنس میں افغان وزیر حج اور مذہبی امور عبدالحکیم منیب نے فائر بندی کا مطالبہ کیا تھا, جو حکومت کو کرونا وائرس جیسے خطرات سے نمٹنے میں مدد دے گا. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خصوصی نشریات میں آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس غالب ہے اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے, اور ایسے میں وہ جو وطن سے دور ہیں ان کے لیے مشکلات اور بھی زیادہ ہیں, اور ان کی مشکلات کا اندازہ لگا کر ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ان کے عزیز بھی بہت پریشان ہیں, خاص طور پر وہ جن کے عزیز اٹلی میں ہیں جو کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا یورپی ملک ہے. اس ملک میں موجود پاکستانیوں کی کیا صورتحال ہے, اور وہاں کی حکومت اور پاکستانی سفارت خانہ ان کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے, اس بارے میں آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے ہم نے اس وقت دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں اٹلی میں پاکستان کے کونسل جنرل ڈاکٹر منظور چودھری, جو اس وقت ٹیلی فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر منظور چودھری صاحب.
وعلیکم السلام یاسمین,
بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کچھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اٹلی میں اس وقت کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے, اور اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ وہاں جو مقیم پاکستانی ہیں ان میں اس وائرس سے متاثر ہونے کا کیا حالت ہے. جی
یاسمین, یہاں پہ اگر کہا جائے کہ اٹلی میں ایک موت کا رقص ہے جو پچھلے 2 مہینے سے جاری ہے, بہت زیادہ انفیکشنز ہوئی ہیں, بہت زیادہ اموات ہوئی ہیں, تقریباً 185,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہیں, اور کوئی 24,000 سے 25,000 کے درمیان لوگ ہیں جو اس دنیا سے دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں. بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کی حالت میں یہ ملک ہے اس وقت, اور ظاہر ہے یہاں پہ اور ملکوں کے لوگ بھی رہ رہے ہیں, تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ پاکستانی رہ رہے ہیں, تو ان کی بھی ان کے اندر بھی یہ جو ہے انفیکشن ہوئی ہے, لیکن چونکہ صورتحال اتنی ابتر ہے کہ یہاں کے جو گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں وہ کافی اوورویلمڈ ہیں, چوک ہو گئے ہیں, تو یہ فارنرز کے بارے میں علیحدہ ڈیٹا یہاں کی جو وزارت صحت ہے وہ شاید نہ دے سکے ابھی, لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ کوئی 200 سے 300 کے درمیان پاکستانی ضرور اس انفیکشن کی زد میں آئے ہوں گے, اور ہمارا یہ بھی اندازہ ہے کہ بدقسمتی سے کوئی 20 سے 25 پاکستانی شاید کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا چکے ہوں.
لیکن ان کی براہ راست آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے؟
جی, چونکہ سرکاری طور پہ ہمیں تصدیق نہیں ہوئی ہے ابھی تک, تو یہ ایک اندازہ ہے, اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں کہ تقریباً اتنا فکر ہوگا. ابھی کچھ ہمیں جو کہنے کے علاقائی ان کے جو حکومتیں ہیں وہ ریجن سے ہمیں انفارمیشن آنی شروع ہو گئی ہے, اور اس میں یہ تو کنفرم ہو گیا کہ 100 سے زیادہ کی تصدیق ہو گئی ہے کہ انفیکشن ہوئے ہیں, اور لیکن یہ اموات کی تعداد ابھی تک نہیں پتہ چل رہی, اور پورے ملک کا جو ڈیٹا ہے وہ میرے پاس اس وقت نہیں.
ٹھیک, تو ویسے اٹلی کی حکومت کرونا سے جو متاثر لوگ ہیں ان کے لیے کیا اقدامات خصوصی طور پر کر رہی ہے جو آپ اس وقت ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں گے؟
یہ دیکھیے, کوئی 20 یا 21 فروری کو جب یہ انفیکشن ڈیٹیکٹ ہوئی ہے یہاں پہ ملان میں ہوئی, اور ملان پھر بعد میں اٹلی کا نیو یارک بن گیا, جیسے آپ کے امریکہ میں نیو یارک کی کیفیت تقریباً وہی ملان کی تھی اور ابھی بھی ہے, تو یہاں پہ زیادہ پاکستانی رہ رہے ہیں. جی, کوئی 1 لاکھ سے زیادہ پاکستانی جو ہیں ملان اور اس کے گرد و نواح میں رہتے ہیں اس علاقے میں, اور جو ہے یہاں پہ پھر سب سے پہلے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا فیبری کے آخر میں, وہ پھر یہ پورے ملک میں لگا دیا گیا. اس کے بعد تقریباً آپ کہہ لیں کہ پچھلے 6-7 ہفتے سے تو بالکل جو ہے زندگی تھم کے رہ گئی ہے. یہاں پہ کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, لوگوں کے کاروبار بھی بند ہیں, لوگوں کی نوکریاں بھی بند ہیں, اور لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. لیکن لوگ بہرحال یہاں کی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, یہاں پہ پولیس اور فوج گشت کر رہی ہے ملان کے علاقے میں اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں, ہسپتال جو ہیں وہ مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں, اور جو ہے بالکل ایک مشکل صورتحال ہے. میں چونکہ ایک سفارتکار ہوں تو مجھے تو نہیں روکا جاتا, تو پھر میں باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو وہ ملان وہ والا اٹلی جو تھا وہ شاید کہیں پہ کھو گیا ہے. गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि लोगों को उनके घरों में रख के ताकि इस इन्फेक्शन की जात में से वो महफूज हो जाए। इसके अलावा मुफ्त इलाज किया जा रहा है लोगों का, चाहे वो इतालवी हो या कोई गैर मुल्की हो, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, इस पे इस बहस पे नहीं जाती यहाँ की गवर्नमेंट। और लोगों का इलाज जो है वो पूरे अच्छे तरीके से हो रहा है, चाहे वो गैर मुल्की हो। इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक स्टिमुलस जिसको कहते हैं 750 अरब यूरो की जो है इकोनॉमिक पैकेज दिया है। लोगों को जिनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं उनको अमदाद दी है, और जो है इसके अलावा जिसे कहें कि फ्री राशन दिए हैं, तो काफी मदद की है, तालब इलमों की काफी मदद की है। ये यहाँ की गवर्नमेंट के इकदाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
और
जी
पाकिस्तानी सिफारत खाने की कुछ खिदमात इस दौरान कि पाकिस्तानी सिफारत खाने ने खास तौर पर पाकिस्तानियों को क्या मदद पहुंचाई, राशन और दूसरी जरूरियातें जिंदगी।
हमारे यास्मीन यहाँ पे इटली में दो सफारती मिशन्स हैं, रोम में पाकिस्तान का सफारतखाना है और मिलान में ये कॉन्सुलेट है जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। सफारतखाना पाकिस्तान ने जैसे ही ये कोरोना वायरस की वबा फैलनी शुरू हुई तो फौरी तौर पे एक हेल्पलाइन जो है एस्टेब्लिश की, और उस पे 24 घंटे लोगों को रहनुमाई की जाती है। पूरे इटली के लिए ये जो है हेल्पलाइन चल रही है। इसके अलावा सफारतखाने पाकिस्तान ने रोम में काफी लोगों की अमदाद की, राशन तकसीम किए, लोगों के पीछे जाके उनके हालात वगैरह देखे, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाके लोगों को देखा, एयरपोर्ट्स के ऊपर उनकी रहनुमाई की, जो जाना चाहते थे उनकी मदद की, जो आ रहे थे उनकी अमदाद की। और इसमें सबसे अहम चीज जो होती है कि राब्ते में रहना, तो जो है लगातार राब्ते में पिछले कई हफ्तों से महीनों से इस सफारतखाना उनके साथ है। इसी तरह से जो कॉन्सुलेट है यहाँ पे मैंने जो है सोशल मीडिया को भरपूर इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है यहाँ पे उनके, फिर जो तालिब इलमों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, टूरिन में हमारी बहुत सारी तालिब इलम कम्युनिटी है वहाँ पे, उनके साथ भी मैंने डायरेक्टली रब्ता रखा। फिर मैंने फेसबुक को भी इसमें इस्तेमाल किया, फिर शॉर्ट वीडियो मैसेजेस भी किए, फिर मैंने अपना टेलीफोन भी दिया जिसपे इस वक्त आपसे बात हो रही है, और आपको मैं मदद करूंगा क्योंकि बीच में टेलीफोन कॉल्स जो आ रही हैं वो इन्हीं तालिब इलमों की और कम्युनिटी की आ रही हैं जिसकी शायद बीप भी आपको सुन रहे हो। तो ये हमने इस तरह से करके रीच आउट किया अपनी कम्युनिटी को, अपने तालिब इलमों को। मैंने भी यहाँ से कॉन्सुलेट से बहुत से लोगों को, कम से कम 300 से 400 तालिब इलम जो है उनकी उनको फूड बास्केट्स दी, और जिनमें वेनिस में भी हम गए, पादोवा में भी गए, हम पिज़्ज़ा में भी गए, पिज़्ज़ा एक जहाँ पे जगह है, और इसी तरह से जो है फ्लोरेंस में हम गए, और भी बहुत सी जगह टूरिन के अंदर हम, तो ये बहुत सी जगहों पे जाके हमने तालिबे इल्मों की भी इमदाद की, पाकिस्तानी फैमिलीज जो सफर कर रही थी उनके साथ भी हमने ये फूड बास्केट शेयर की। फिर इन लोगों के जो हॉस्पिटल्स में मसले हो रहे थे उनके लिए भी हमने इनके साथ रब्ता किया, मुकामी हुकूमत के साथ रब्ता किया ताकि हमारे पाकिस्तानियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। ये बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, हम इसमें से अभी भी गुजर रहे हैं। 3 मई को फैसला होगा कि लॉकडाउन या बंदिश जो है वो खत्म की जाएगी या उसमें कोई नरमी की जाएगी, फिर हालात ज्यादा वाजे होंगे।
तो अंदाजन जो आपने तालिब इल्म का जिक्र किया, इटली में कितने पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं, और आपने कहा कि उनको राशन वगैरह तो आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वापस पाकिस्तान जाना चाहें तो उनके लिए कोई फ्लाइट्स का बंदोबस्त हो रहा है?
यास्मीन यहाँ पे तकरीबन 2000 के करीब पाकिस्तानी तालिबे इल्म हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और ये ज्यादातर तो यहाँ की है जिन्हें यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बहुत से तालिबे इल्म मास्टर्स और डॉक्टरेट में भी हैं और मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन्स हैं साइंस में भी आर्ट में भी सब में पढ़ रहे हैं, और ये वापस जाते हैं तो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं। हमें इनका बहुत ज्यादा ख्याल है, जैसे बताया कि हमने मुख्तलिफ शहरों में इनको फूड बास्केट्स पहुंचाई, चूंकि यहाँ पे लॉकडाउन है तो आम गाड़ियां चल नहीं सकती, तो फिर हमने अपनी जो डिप्लोमेटिक कार्स हैं उनको इस्तेमाल किया, और मेरा अमला जो है वो जाके इनके घरों में जाके इनको जो है फूड बास्केट्स देता है जी, और जैसे जैसे हमें पता चलता है उसी हिसाब से हम फिर इनकी मदद करते हैं। इसके अलावा हमने इनकी माली इमदाद भी की है कुछ केसेस में, जहाँ पे कुछ तालिबे इल्म जो हैं वो खासतौर पे हमारी कुछ बच्चियां जिनके अपने बच्चे हैं और वो तकलीफ में थी, तो उनकी भी हमने इमदाद की है जी। इन तुलबा में दो को कोरोना वायरस भी था और वो बेचारे काफी तकलीफ में थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब तंदुरुस्त हो गए हैं, उनको भी हमने उनके घरों में जाके देखा और उनकी इमदाद की। जो सवाल है कि इनको पाकिस्तान जाने का क्या किया जाएगा, यही सबसे बड़ा इस वक्त मसला है और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है कि इनका क्या किया जाए। पाकिस्तान का सफारतखाना रोम में, और मैं भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ इसमें इस वक्त रबते में है। आप ये देखिए कि मिलान में जो एयरपोर्ट्स हैं वो सारे बंद हैं, ना कोई बैनुल अक्वामी परवाज यहाँ से जा रही है ना आ रही है, और इसी तरह से ना कोई इनकी कोई लोकल फ्लाइट्स की इजाजत है। अभी सिर्फ कार्गो और स्पेशल फ्लाइट्स की इजाजत है, तो मैंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि एक स्पेशल फ्लाइट कम अज कम भेजी जाए जो मेरे पाकिस्तानी तालिबे इल्मों के लिए और पाकिस्तानी बरादरी के लिए भेजी जाए, ताकि इनमें से जो ज्यादा जरूरी जाने वाले लोग तैयार बैठे हैं उनका कुछ हल निकल सके।
कितने हैं ये लोग?
इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा, मेरे ख्याल से मेरा अंदाजा है कि 500 से 600 के दरमियान तो कम अज कम लोग तैयार होंगे अब फौरी तौर पर जाने के लिए। तो अभी हम इस सिलसिले में उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे एक या दो फ्लाइट हमें अगर दे दे तो फिर इनका मसला हल हो जाएगा। और इस सिलसिले में अभी हमारे जो गुफ्तगू शनीद है वो पाकिस्तान से जा रही है।
एक और मसला जो मौजूद है, एक सहाफ़ी ने हमें बताया, इटली में मौजूद हैं शफीक साहब, उन्होंने कहा कि क्योंकि ऐसा पता नहीं लग रहा कि कौन कोरोना से फौत हुआ और कौन किसी और वजह से फौत हुआ, तो बहुत से जो लोग कोरोना के वजह से नहीं फौत हो रहे उनकी मैयतें भी पाकिस्तान भिजवाने का या किसी अंदाज में महफूज करने का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो इस बारे में कुछ सोच रहे हैं आप कि क्या किया जाए उन लोगों का?
जी देखिए, ये जो यहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो तो एक प्रॉपर डेथ सर्टिफिकेट इशू करती हैं और उसमें पता चल जाता है कि कोरोना वायरस से डेथ हुई है या नॉर्मल डेथ है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जो है यहाँ पे मेरे रीजन मिलान के इलाके में 6 तकरीबन मैयतें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल डेथ्स हुई हैं, जो कि जिसको कह लें कि तबीयी मौत अपनी लोग मरे हैं, और उसके जो पेपर वर्क है वो भी हमने कॉन्सुलेट ने मुकम्मल कर लिया है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया आपसे कि इस वक्त चूंकि फ्लाइट्स पाकिस्तान के लिए नहीं है, तो ये भी जो हमारी डेड बॉडीज है हमारे प्यारों की जो है मैयत में, इनके लिए हम इंतजार कर रहे हैं कि पीआईए की कुछ स्पेशल फ्लाइट आ जाए तो हम इनको भिजवा सके इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पे फैसला होगा और ये जो जो तबई मौत वाले केस हैं इनको हम कोशिश करेंगे कि भिजवा सके।
वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने बात की कि वो लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त, ये मसला मौजूद है पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि वो चाहते हैं कि उनकी मैयतें पाकिस्तान वापस पहुंचाई जाएं, तो वो अब इस वक्त सरखाने में महफूज हैं वो मैयतें।
जी ये रखी गई हैं और अमानत है और इनके पेपर वर्क तो हमने कंप्लीट कर ली जैसे मैंने अर्ज किया, फिर जब इनका इनकी तरसील होनी है तो फिर उस वक्त भी जो है कुछ उसके लवाजमात होंगे वो पूरे किए जाएंगे। मैंने कोशिश की है, टर्किश एयरलाइंस भी मैं बात कर रहा हूँ, एमिरेट्स भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनके कार्गोज वगैरह शायद यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इनके जो अपने हब्स होते हैं जैसे ये दुबई में या इस्तांबुल में है, तो वो बता रहे हैं कि वहां से आगे तरसील जो है वो नामुमकिन है, लेकिन हम इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा जो है ऑप्शन अभी जेर गौर है और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं अपनी पाकिस्तानी बरादरी की जो मुमकिन हो सका इंशाल्लाह मदद करूँगा।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजूर चौधरी साहब, आप इटली में کونسل جنرل ہیں پاکستان کے کونسلیٹ میں، اور آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس وقت میلان میں کیا صورتحال ہے، روم میں کیا صورتحال ہے پاکستانیوں کی. آپ کا بے حد شکریہ. یہ تھے میلان اٹلی میں پاکستان کے کونسل جنرل جناب ڈاکٹر منظور چودھری. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. آپ سن رہے ہیں کرونا کے بارے میں ہمارا خصوصی پروگرام. اس پروگرام میں جیسا کہ ہم آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں جو پاکستانی آباد ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچا رہے ہیں کہ وہ کرونا کی اس وبا کے دوران کن حالات میں ہیں، کن مسائل کا شکار ہیں، ان کو ان ملکوں کی حکومتیں کیا مدد کر رہی ہیں، اور وہاں کے جو سفارت خانے ہیں پاکستانی وہ ان کی کیا مدد کر رہے ہیں. تو آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرانس میں پاکستان کے سفیر جناب معین الحق. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فرانس میں جو پاکستانی ہیں وہ کتنے ہیں اور اس وقت ان کی کیا صورت حال ہے. السلام علیکم معین الحق صاحب.
جی وعلیکم السلام.
بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو پہلا سوال یہی، کچھ بتائیے کہ پاکستان کے کتنے لوگ ہیں، کتنے پاکستانی ہیں جو فرانس میں مقیم ہیں، اور کرونا کے اس بحران کے دوران ان کی کیا صورت حال ہے.
سب سے پہلے یاسمین صاحب بہت شکریہ کہ وائس آف امریکہ کے اس پروگرام نے آپ نے مجھے مدعو کیا. فرانس میں پاکستانیوں کی جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب ہے، اور اس میں سے جو میجورٹی جو ہے وہ پیرس اور اس کے گرد نواح میں رہتے ہیں، اور باقی جو چھوٹی چھوٹی 2-3 ہزار جو ہیں وہ لیون میں ہیں اور باقی چھوٹے دوسرے شہروں میں ہیں. تو یہاں پہ کرونا وائرس کی جو فرانس ہے اس وقت اس وہ میرے خیال میں چوتھے نمبر پہ ہے جو کیسز یہاں پہ ہوئے ہیں، کوئی 1.5 لاکھ سے اوپر کیسز ہو چکے ہیں، اور اس میں انفارچونیٹلی پاکستانی جو کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق اب تک کوئی 50 کے قریب لگ بھگ لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں، بیمار ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ اس میں سے کوئی 11 جو پاکستانی ہیں وہ وفات بھی پا گئے ہیں. تو باقی اور کافی لوگ جو ہیں وہ ریکور ہو کے اپنے گھروں میں بھی آ گئے ہیں، اور کچھ لوگ ابھی تک کریٹیکل ہیں اور اسپتالوں میں ہیں.
تو جو 11 پاکستانی انتقال کر گئے ہیں ان کی تدفین کا کوئی بندوبست ہو سکا؟ ان کو پاکستان ان کی میتیں واپس پہنچانے کا بھی کوئی ارینجمنٹ ہوا؟
جی اس میں یہ ہے کہ ان میں سے میجورٹی نے سب کی جو تدفین یہی فرانس میں ہو گئی ہے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ فلائٹس سسپینڈ ہیں، اور ان کا مشکل تھی ان حالات میں ایسی جو اموات ہوئی ہیں ان کی باڈیز کو ٹرانسپورٹ کرنا، تو سب نے اپنی تدفین یہیں پہ کر دی ہے. اور ہم نے جتنی جو ان کی جو ضروریات تھیں، جو اٹیسٹیشنز تھیں، یا ایک کیس میں وہ ان کے پاس مالی مسائل تھے ان کو، اس میں بھی ہم نے ایمبیسی نے ان کی مدد کی ہے.
تو اور جو دوسرے پاکستانی وہاں آباد ہیں کیا ان کو جو گھروں میں بند ہیں ان کو راشن اور جو ان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں ان کو میسر ہیں؟
جی بالکل، ہم نے ایسے حضرات کے لیے، ایسے صاحب کے لیے جو کہ مطلب جن کی جابس ختم ہو گئی ہیں یا جو ڈیلی بیجز پہ تھے اور اب ان کے روزگار نہیں رہا، تو ایمبیسی نے ایک ہفتہ ہو گیا ہے ایک لانچ کیا تھا یہ راشن ڈیلیوری اسکیم کا. تو اب تک ہم نے کوئی 250 فیملیز کو یا انڈیویجلس کو یہ راشن جو ضروری راشن تھے وہ پہنچائے ہیں ان مشکل حالات میں بھی، اور اس میں ہمارا جو پاکستانی مخیر حضرات ہیں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دیا. اس میں والنٹیئرس بھی ہمیں ملے جو انہوں نے ڈسٹریبیوشن میں ہمارا ساتھ دیا، بلکہ ہم نے مختلف علاقوں میں ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بھی بنا دیے تھے تاکہ لوگوں کو زیادہ ٹریول نہ کرنا پڑے، ایمبیسی نہ آنا پڑے، اور جو اپنے نزدیک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ سے جا کے لے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بہت سارے جو لوگ تھے ہمارے پاکستانی بہن بھائی یا ایسے لوگ، ایسی خواتین یا بزرگ جو باہر نہیں جا سکتے سودا سلف لینے کے لیے، ان کو بھی ہم نے اس سکیم کے تحت یہ راشن پہنچایا.
उनकी अगर इस दौरान किसी की सेहत खराब हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, उनके लिए कोई बंदोबस्त है कि वो कैसे रابطہ करें डॉक्टर से, या कोई टेली मेडिसिन किस्म की कोई वेबसाइट उनके लिए दस्तियाब है?
उसमें यह है कि जी फ्रांस का जो हेल्थ सिस्टम आपको पता है दुनिया में एक बड़ा बेहतरीन है, तो सारे लोग जो यहाँ पे वो एंटाइटल्ड हैं इस हेल्थ सिस्टम से फायदा उठाने के लिए। जो पाकिस्तानी ज्यादातर जो रहते हैं वो या रेजिडेंट्स हैं या नेशनल्स हैं, तो हर एक अपना एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल है। अब खैर जैसे बाकी दुनिया में भी लोग कोरोना वायरस के उसमें ज्यादा फोकस उसी पर है, यहाँ पे भी हेल्थ सिस्टम का ज्यादा फोकस कोरोना वायरस पे है, लेकिन टेली मेडिसिन हो रही है। हमारी भी जैसे सिफारत खाने के मुझे कुछ लोगों का पता है, जब वो बीमार हुए तो उन्होंने टेलीफोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपने डॉक्टर्स को रब्ता किया और वहां से उनको कंसल्टेशन मिली या जो भी एडवाइस मिली। तो इसी तरह पाकिस्तानीज भी, मुझे ऐसी कोई किसी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कोई के उनको कोई मसला इस हवाले से पेश आ रहा हो।
अच्छा, और पाकिस्तानी तालिबे इल्म भी वहाँ मौजूद हैं फ्रांस में, कुछ अंदाजा कि उनकी कितनी तादाद है और क्या वो फंस गए हैं, वापस जाना चाहते हैं? अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो क्या सिफारत खाना उनकी कुछ मदद कर रहा है वापसी के सिलसिले में या हुकूमत पाकिस्तान?
जी बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन लगभग 800 के करीब हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो कि माशाल्लाह मास्टर्स एंड पीएचडी डिग्रीज में हैं मेजॉरिटी, जो कि फ्रांसीसी हुकूमत और हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान के, उनके स्कॉलरशिप्स में आए हुए हैं, कुछ सेल्फ फाइनेंस स्कीम पे भी हैं। तो उनसे हमारा बड़ा रापता रहा इस हालात में, क्योंकि अभी हमें अंदाजा था कि स्टूडेंट्स की बजाय, क्योंकि सबसे पहले यूनिवर्सिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही बंद हुए थे, तो वो अपने अपने कमरों में अपने हॉस्टल्स में मुकीद होके रह गए हैं। उनके कुछ सबसे पहले मोराल भी डाउन थे, तो मैंने सबसे पहले तो उनके साथ एक ये वीडियो कॉन्फ्रेंस की स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, कोई 250-300 स्टूडेंट्स ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराई हुई, तो हमने सबको कहा कि 40-50 के करीब स्टूडेंट्स उसमें शामिल हुए, तो उनसे गुफ्तगुशनीद रही, उनका मोराल हाई किया, उनके मसाइल सुने, और कुछ उनमें से जाना चाहते हैं पाकिस्तान क्योंकि वो उनकी यूनिवर्सिटीज बंद हो गई हैं, कुछ की तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कुछ की नहीं हो रही हैं, तो हमने उनका रजिस्ट्रेशन का एक सिलसिला शुरू किया है। तो कोई मेरे ख्याल में 30 के करीब स्टूडेंट्स ने हमें रजिस्टर किया है कि वो वापस जाना चाहेंगे। तो जैसे ही ये एक क्रिटिकल मास हो जाएगा लोगों का जो कि यहाँ पे से वापस जाना चाहते हैं, हुकूमत से दरखास्त करेंगे कि कोई स्पेशल फ्लाइट भेज के उनको वापस लाया जाए।
लेकिन इसमें कोई अंदाजा कि कब तक ये वापसी उनकी मुमकिन हो सकेगी? हुकूमत पाकिस्तान कब तक ये अरेंज कर पाएगी?
जी हमने ये शुरू कर दी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब तक के कुछ 40 लोगों ने किया। यहाँ पे देखे ना, कुछ मुल्कों में स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी बहुत थे जिनके वीजा एक्सपायर हो गए या ट्रांजिट में थे, वो बहुत बड़ी तादाद में थे। फ्रांस में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है, तो एक फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए आपको एक क्रिटिकल मास चाहिए होता है, तो वो जैसे ही हो जाएगा मैं PIA मैनेजर जो यहाँ पेरिस में मौजूद है उनसे भी अभी हम रबते में है, तो जैसे ये एक हमें पता चलता है कि एक तादाद हो गई है जिससे हम फ्लाइट ऑपरेट कर सके, तो हम जरूर करेंगे।
तो और वो जो तालिबे इल्म इस वक्त हॉस्टलों में बंद है, मुकैद हैं, तो उनके लिए बंदोबस्त तमाम, उनके राशन का, उनके खाने पीने का आपको मालूम है कि मिल रहा है उनको?
जी, वो अपने हॉस्टल्स में है, ऐसे उनको इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ ये है कि कईयों की तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, उनको सिर्फ ये जो फ्रांसीसी हुकूमत के जो अहकामात हैं लॉकडाउन के जो मेजर्स हैं वो उनको ऑफकोर्स फॉलो करने हैं, तो उसको फॉलो करते रह रहे हैं। खाना पीना उनका मौजूद है, अगर किसी कोई ऐसी मसला है किसी फाइनेंशियल नीड्स तो हम उसको भी पूरा कर रहे हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स ने हमें रब्ता किया है जो पेरिस में, नहीं तो नहीं साउथ ऑफ फ्रांस में थे, तो हम उनके राशन का बंदोबस्त कर रहे हैं।
तो जनरली क्या फ्रांसीसी हुकूमत ने क्या कोरोना से बचाव के लिए क्या इंतजाम किए हैं जो दूसरे मुल्कों से जरा डिफरेंट हैं?
देखिए यहाँ पे लॉकडाउन तो शुरू हो चुका था, ये मार्च 20 से ही शुरू हो गया था। पहले तो उन्होंने सारे तालीमी अदारे बंद कर दिए, थोड़ा सा मतलब क्रिटिसिज्म इन पे आ रहा था कि इन्होंने डिले किया, थोड़ा सा डिले किया, लेकिन उन्होंने अपने मेजर्स ले लिए थे, फिर बिजनेसेस बंद कर दिए, फिर ये ऑफकोर्स उन्होंने एक बड़ी सख्ती कर दी बाहर जाने के लिए, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपको साइन करना पड़ता है कि अगर आपको जरूरी काम से जा रहे हैं या ग्रोसरी करने जा रहे हैं या प्रोफेशनल काम है जो आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते तो आपको वो टाइम लिखना पड़ता है। अपने घर से आप एक मील किलोमीटर के दायरे के अंदर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो ये सख्तियां की हुई है। अगर इसको कोई वॉयलेट करता है तो बड़ा सख्त फाइन भी है, तो इस लिहाज से एक डिसिप्लिन सा आ गया है, लोग खुद भी अपने घरों में रह रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अपनी एक जैसे कि तमाम मुल्कों की इकोनॉमीज पे बड़ा इम्पैक्ट आया है तो उसके लिए एक इकोनॉमिक पैकेज, स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। उसमें उसका जो मेन बुनियादी चीज जो है उन लोगों के लिए है जो कि अब बेरोजगार हो गए हैं, तो हुकूमत फ्रांस ने अब उस चीज का बेड़ा उठाया है कि इनकी जो सैलरीज है, इनके जो इमोल्यूमेंट्स है वो हुकूमत फ्रांस बेयर करेगी, और उनके जो रेंटल या यूटिलिटीज के बिल हैं उन सब में उनमें छूट भी दे दी है, और इस हिसाब से जो कंपनियां हैं उनको बहुत बड़ी तादाद, बड़े बड़े एक अमाउंट है वो उनको दिया जा रहा है ताकि वो अपने ऐसे लोगों को हेल्प कर सके इस मुश्किल हालात में।
तो ये हुई सूरत हाल, यानी जो बेरोजगार हो गए उनके लिए भी फ्रांसीसी हुकूमत ने ऐलान किया कि वो ऐलान किया या इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है?
जी, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है और मिलियंस ऑफ यूरोस जो है ऑलरेडी डिस्पर्स भी हो गए हैं लोगों को।
तो कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जिनको ये इमदाद में से कुछ मिला पैकेज में?
जी, मेरे पाकिस्तानी यहाँ बहुत जो काम करते हैं मुख्तलिफ अदारों में, इंस्टीट्यूशंस में, और जो अब घर बैठ गए हैं जिनको तनख्वाही नहीं मिल सकती फॉर एग्जाम्पल, उनको इस स्कीम से उससे फायदा उठा रहे हैं।
तो ये बताइए मोइन साहब कि आपकी ज़ाती राय क्या है, एकदम से फ्रांस में इनके मुतासरीन की तादाद में एक शार्प इजाफा क्यों हुआ?
यहाँ पे देखें, फ्रांस और पेरिस जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो टूरिस्ट हब है, फ्रांस नंबर वन है दुनिया में टूरिज्म के हिसाब से, तो यहाँ पे दुनिया भर से लोग आ रहे थे, और स्पेशली जो पेरिस और इसका गिर्द नवा, ये अब एक गढ़ है जहाँ सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हुए हैं वो पेरिस और इसके गिर्द नवा में हुए हैं, जिसकी ये भी वजह थी। तो जो जब इनको रियलाइज इन्होंने किया कि अब यहाँ पे ये फैलना शुरू हो गया है, तो उस वक्त तक शायद मेरे ख्याल में ऑलरेडी ये काफी इसका इफेक्ट आ चुका था इसमें सोसाइटी में। तो एक तो ये वजह है, मेरे ख्याल में इंटरेक्शन बहुत था बाहर की दुनिया से, चाइना से बहुत बड़े तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं, तो 3 मिलियन चाइनीज टूरिस्ट यहाँ पे आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना से आया, लेकिन पहला कोरोना वायरस चाइना में हुआ था केसेस वुहान से, तो हो सकता है वहां से भी, हालांकि बल्कि जो पहली जो डेथ हुई फ्रांस में वो एक चाइनीज नेशनल की थी जो टूरिस्ट आया हुआ था। इस हिसाब से जब उन्होंने को रियलाइज हुआ कि अब ये फैल रहा है, तो उन्होंने फिर अपने वो मेजर्स शुरू कर दिए लॉकडाउन के, और मुख्तलिफ और भी फैक्टर्स लोग कहते हैं जिनका जिन पे मैं बात नहीं करना चाहूंगा कि यहाँ की इम्यूनिटी लोगों की कम है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये बातें सही है कि गलत है। लेकिन यहाँ पे अब यूरोप जो है एक एपिसेंटर बन गया था बिकॉज ऑफ, मेरे ख्याल में इनका जो दुनिया के साथ इंटरेक्शन था, टूरिज्म यहाँ पे बहुत होता था, इंटरनेशनल ट्रेड थी, लोग आते थे यहाँ पे, तो उससे यहाँ पे ज्यादा इम्पेक्ट हुआ है।
तो अब जबकि फ्रांस के लोगों को तो आदत है बाहर रहने की, तो क्या घरों में बैठकर वो कुछ जहनी दबाव का शिकार तो नहीं हो रहे?
जी, आपने सही कहा, यहाँ पे ये मुश्किल है, ये फ्रांसीसी बाहर जाने के बड़े शौकीन है, खाने पीने के बहुत शौकीन है, रेस्टोरेंट्स में जाके दोपहर को रात को ज्यादातर खाना इनका बाहर ही होता है, तो ऑफकोर्स इनके लिए डिफिकल्ट तो है। तो शुरू में जब हुकूमत ने ये लॉकडाउन अनाउंस किया था, उस वक्त इन्होंने रिक्वेस्ट की थी फ्रांसीसियों से कि आप घरों में बैठे, तो एक वीकेंड में देखा गया कि मौसम बड़ा अच्छा है, तो लोगों ने उस तरह से उसको अमल नहीं किया और फैमिलीज के साथ बाहर निकल आए, तो پھر حکومت کو اور فرانسیسی صدر کو ایک انہوں نے اپنی تقریر بھی کی اور نیشن کو ایڈریس کیا, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا, ان کو تنبیہ کی کہ اب آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا, یہ حالات ایسے ہیں کہ ہمیں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے ڈسپلن کا, تو خدا رب اپنے گھروں میں بیٹھے تو اب لیکن کر تو رہے ہیں, مشکل ہے جیسے تمام دنیا میں لوگوں کے لیے گھر میں بیٹھ کے اس کے جو ایک سائیکولوجیکل اثرات تو آئیں گے وہ یہاں پہ بھی ہیں.
جنرلی آپ بتائیں آپ کا کیا ویو ہے کہ کرونا کا بحران یا کرونا وائرس کی جو یہ وبا ہے جب یہ ختم ہو جائے گی تو کیا فرانس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, لائف سٹائل کس طرح بدلا ہوا ہوگا؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ کرونا کے بعد فرانس کیا پوری دنیا میں ایک بہت بڑی چینج آ جائے گی. ہمارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا, ہمارا ورکنگ میتھڈ چینج ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ ایک فیکٹری ہو, ملٹی نیشنل ہو, بینک ہو, لوگ ٹیلی ورکنگ پہ چلے گئے ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ ٹیلی ورکنگ پہ چلے گئے ہیں. میں یونیسکو میں کبھی امبیسڈر ہوں, یونیسکو پورا بند پڑا ہے, یونائٹیڈ نیشنز کے سارے سسٹمز بند پڑے ہوئے ہیں, وہ سب گھروں میں بیٹھ کے ہم کام کر رہے ہیں, اپنی میٹنگز کر رہی ہیں. تو ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے جس میں ٹیکنالوجی کا بڑا عمل دمل ہے. ٹیکنالوجی کا آلریڈی عمل دمل ہماری لائف میں بہت تھا, لیکن اب دیکھنے میں یہ آئے گا کہ یہ ہماری زندگیوں پہ شاید زیادہ حاوی نہ ہو جائے. اب بہت ساری جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے ہیڈ کوارٹرز کیوں بنا دیے, اتنا خرچہ کیوں کر دیا, اگر ہم ٹیلی ورکنگ کر سکتے تھے تو اب کیوں نہ. تو یہ چینج آنے والی ہے دنیا میں, جو لوگوں کی سوچ چینج ہوگی. میرے خیال میں جو ہم ابھی کریٹیسائز کرتے تھے نا کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں پہ بہت حاوی ہو گئی ہے, میرے خیال میں آگے آ رہے وقتوں میں یہ پریسیپیٹیٹ ہو جائے گا اور زیادہ حاوی ہو جائے گی.
تو آپ سے ایک اور سوال یہی کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرونا کی یہ جو وبا کا دور ہے یہ ٹیکنالوجی کے انہانسمنٹ کا ایک نیا دور ہے جس میں اب جو دنیا ہے وہ ساری کی ساری نئی چیزیں انوینٹ کرے گی, انوویشنز کا دور ہے یہ, جب لوگ نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ اپنے پرابلمز کو سولو کرنے کے لیے. تو یہ دور ایک گو کے ایک اندھیری کا دور ہے, مشکل کا دور ہے, لیکن اس کے پردے سے کچھ نئی چیزیں ظاہر ہوں گی جو کہ دنیا کی جو اس وقت کمیونٹی ہے, جو ایک گلوبل ولیج ہے, اس کی بہتری کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے.
دیکھیں جی, ہم جس دور سے گزر رہے تھے یہ ایک آلریڈی ایک انوویشن کا دور تھا, یہ ایک ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا دور تھا. انپریسیڈنٹڈ ٹائمز تھے, جب جس 10-15-20 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو جو انسان نے ترقی کی ہے سائنس میں اور آئی ٹی کے فیلڈ میں وہ ایک انپریسیڈنٹڈ تھی. تو کرونا وائرس نے میرے خیال میں جب آیا ہے یہ کرائسس, تو اس سے شاید اور جو نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی, فار ایگزامپل یہ ورچوئل میٹنگز کا جو پلیٹ فارم ہے, اس میں ایک نئی تیزی آئے گی, نئی ڈیولپمنٹس ہوگی. میڈیکل سائنس میں ایک نئی تیزی آنی ہے, انہوں نے دیکھنا ہے کہ باوجود کہ ہم اتنے ایڈوانس ہو چکے تھے, ہم ایک چھوٹے سے ایک جراثیم نے ہمیں مسمار کر کے رکھ دیا ہے, تو آئی تھنک لوگوں میں ایک نئی تھنکنگ آنی ہے کہ ہم نے کیسے اپنے جو سسٹمز ہیں, ہمارے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ سسٹمز ہیں, ان کو کیسے اپ گریڈ کرنا ہے تاکہ یہ فیوچر میں جب ایسا کرائسس آئے تو ہم اس کو نپٹ سکے. فائنینشیل سسٹمز کو دیکھنا پڑے گا, ملکوں کو دیکھنا پڑے گا کہ انٹرنیشنل سولیڈیریٹی جو ہے اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں تاکہ ایسے کرائسس میں ہم مل کے اس کا مقابلہ کر سکے, بجائے کہ ہم انڈیویجل کنٹریز میں بند ہو کے رہ گئے ہیں. اور جیسے گلوبلائزیشن تھی, گلوبلائزیشن کے بڑے پازیٹو اسپیکٹ بھی تھے, اب اس کے نیگیٹو امپیکٹ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو گلوبل سپلائی چین ہے وہ بند ہو کے رہ گئی ہے. تو اب ڈفرنٹ اکانومیز کو, کنٹریز کو سوچنا ہوگا کہ جب ایسا کرائسس آتا ہے, جب پوری دنیا ایک مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے, تو ایسے سسٹمز کیسے ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکے اور ایک کلیکٹیو ہیومینٹی کے طور پہ بھی ہم کام کر سکیں.
بے حد شکریہ معین الحق صاحب, آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور کچھ ریلیونٹ اور کچھ ذرا سے ریلیونٹ سوالوں کے جواب دیے, آپ کا بے حد شکریہ.
بہت شکریہ یسمین صاحبہ.
ये थे फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर जनाब मुइन उल हक, जो बता रहे थे कि फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानियों की क्या सूरत हाल है और कोरोना के इस बुहरान के दौरान वो किस तरह अपने मसाइल को हल कर रहे हैं और सिफारतखाना उनके मसाइल को हल करने में क्या कुछ कर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील। आप सुन रहे हैं कोरोना के बारे में हमारा खसूसी प्रोग्राम। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील। आप सुन रहे हैं कोरोना के बारे में हमारा खसूसी प्रोग्राम। यहाँ अमरीका में पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों की एक तंजीम अपना बड़े फाल तरीके से इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, यहाँ अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी। और उस तंजीम के अपना मेरिट कमेटी के जो सरबरा हैं डॉक्टर शाहिद रफ़ीक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेरीलैंड से। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि अपना जहाँ दूसरी फलाही सरगर्मियों में मसरूफ़ है, वहाँ टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, वो क्या कुछ कर रही है, इस बारे में उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनको खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद रफीक साहब।
जी सलाम अलैकुम यास्मीन, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी और मौका दिया अपनी तंजीम के बारे में बताने का।
आप अपना की जो मेरिट कमेटी है उसके सरबरा हैं, तो कुछ बताइए कि अपना की मेरिट कमेटी जो है वो क्या कुछ करती है आम दिनों में और इस वक्त क्या खास कर रही है, जबकि कोरोना ने पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका और पाकिस्तान को भी अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है।
जी तो अपना एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है सारे यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के पाकिस्तानी ओरिजिन डॉक्टर्स की। तो अपना इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारे काम करती हैं और उसके उनको काम उन काम को करने के लिए डिफरेंट कमेटीज हैं। तो एक कमेटी उनमें से मेरिट कमेटी है जिसका नाम है MERIT, और इसी नाम के अंदर इसका मकसद और मिशन शामिल है। इससे मेरिट से बनता है मेडिकल एजुकेशन रिसर्च इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली ये इस कमेटी का खास जो मकसद गोल है वो ये है कि पाकिस्तान में जहाँ पे भी कहीं गैप्स हैं, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में माशाल्लाह हम भी पाकिस्तान से हैं, बहुत जहीन बहुत उम्दा डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देर आर सम गैप्स इन सम डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिकल फील्ड्स और हेल्थ केयर में। तो हमारी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ मिलके एक आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे हम उनके साथ मिलके कुछ काम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन थोड़ी बेहतर हो जाए, जो कि इस वक्त भी बेहतर है लेकिन उसको और बेहतर किया जा सकता है। तो उसमें जो जनरली जैसा आपने कहा कि आमतौर पे जो हम काम करते हैं वो ये है कि ये मेरिट कमेटी अपना की बनी थी 2007, और जो इस वक्त की प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नाहिद उस्मानी, वो एक्चुअली उन्होंने ही शुरू की थी। तो वो एक किस्म की बानी है इस कमेटी की, और मैं उस वक्त एज ए मेंबर मैंने ज्वाइन किया और उस वक्त से आज तक मुंसलिक हूँ और पिछले 3-4 सालों से मैं इसका चेयर हूँ इस कमेटी का। तो बेसिकली व्हाट वी डू के हमने अपना जो कई नई स्पेशलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल इंटेंसिव केयर, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी मेडिसिन, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, चाइल्ड साइकाइट्री। सो डिफरेंट मौकों पे फ्रॉम 2008 टू 2015 हमने CPSP जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन है उनके साथ मिलके ये कोशिश की कि ये स्पेशलिटीज एंड सब स्पेशलिटीज डेवेलप हों पाकिस्तान में। इसी तरह पिछले 2-3 सालों में हम पाकिस्तान सोसाइटी, न्यूरोलॉजी सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं जिस तरह के मूवमेंट डिसऑर्डर एक सब स्पेशलिटी है पाकिस्तान में नहीं है उसके माहिर। स्ट्रोक के अब है कुछ नहीं है, और स्ट्रोक इज अ बिग थिंग, उसमें हमने काम शुरू किया। तो जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, डिफरेंट इदारे हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे भी हमें वो याद करते हैं या हमें मदद के लिए या कोलैबोरेशन के लिए कहते हैं, तो हम उनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। एक और जो चीज मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 सालों से जो मेरिट कमेटी ने किया कि एक वीकली एक लाइव वेबिनार एक होता था, जो कि 36 मेडिकल स्कूल जो पाकिस्तान के हैं वो लॉग इन हो जाते थे एवरी मंडे, हर सोमवार को वहां पे 8:30 का टाइम और यहाँ पे 11 बजे रात के, इतवार की रात 11 बजे और वहां पे 8 बजे सुबह पाकिस्तान में। ये पिछले 10 सालों से हम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ उनमें साइकाइट्री, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, डर्मेटोलॉजी, उसके लेक्चर हुए और लाइव लेक्चर हुए। तो फिर हमने ये कोशिश की कि पिछले 1-2 सालों में हम कुछ कोर्सेज शुरू करें स्ट्रोक के और मूवमेंट डिसऑर्डर के। तो ये सारा कुछ हो रहा था, हमारी वेबसाइट भी है अपना merit.com। तो इतने में ये कोविड की जो पेंडेमिक शुरू हुई। जस्ट बिफोर आई विल कम टू कोविड, मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूँ कि जो हमने बहुत बड़ा काम किया इस साल, कि फर्स्ट टाइम ये हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि अपना मेरिट ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अरेंज की इन रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ये 4 और 5 मार्च को वहां पे मुलाकात हुई और हायर एजुकेशन कमीशन के कोलैबोरेशन से हुई। तो ये जो है जो कॉन्फ्रेंस है ये बहुत कामयाब रही, और उसके बाद हमारे वफद ने वजीर आजम इमरान खान से और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से भी मुलाकात की, और उन्होंने और हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ एडवाइजर जो हैं मिर्जा जफर, उनसे भी मुलाकात की। तो वो सब ने ये एग्री किया कि फैमिली प्रैक्टिस जो है वो उसको वाकई शुरू होना चाहिए पाकिस्तान में एज ए डिसिप्लिन। तो ये एक बहुत कामयाबी थी मेरिट अपना मेरिट की कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को सारे लीडरशिप को एक जगह जमा किया और उस पर काम शुरू किया। लेकिन जैसे ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, हम लोग वापस आए, तो ये कोरोना का इतना बड़ी COVID-19 डिजीज शुरू हो गई और पूरी दुनिया उसकी लपेट में है, स्पेशली अमेरिका में सबसे ज्यादा है, पाकिस्तान में भी है, और खुदा करे कि पाकिस्तान में ज्यादा ना फैले, लेकिन खदशा रहता है कि किसी वक्त भी एक बड़ी सर्ज जा सकती है। तो हमने अपने अपना मेरिट के हवाले से हमने ये काम शुरू किया कोविड में कि एक लाइव वेबिनार हर रोज रात को यहाँ पे जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से 11 बजे रात को वो होते हैं और पाकिस्तान में वो सुबह 8 बजे होती है दूसरी। तो हमने जितने भी COVID-19 डिजीज के डॉक्टर्स जो पाकिस्तान में उसको डील कर रहे हैं, चाहे वो इंफेक्शियस डिजीज के लोग हैं, इंटरनल मेडिसिन के हैं, फैमिली प्रैक्टिस हैं, वो आ जाते हैं सारे उसको अटेंड करने। और यहाँ से हम लोग बड़ी बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी हैं, जिस तरह हार्वर्ड है, मेथडिस्ट हॉस्पिटल है, नॉर्थ वेस्टर्न है शिकागो में, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा है, मेयो है, इन सब नामवर इदारों से मुख्तलिफ आईडी स्पेशलिस्ट और इंटेंसिविस्ट जो आईसीयू के स्पेशलिस्ट है वो आ जाते हैं, और वो एक पैनल डिस्कशन होती है, पहले एक छोटी टॉक होती है डिफरेंट एंगल्स पे, और फिर एक पैनल डिस्कशन होती है और क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। तो ये आप समझिए कि बिला नागा हमने 20 दिनों से पिछले ये कर रहे हैं यहाँ पे, और ये बड़ी कामयाब रही और काफी हेल्प हुई पाकिस्तान से।
तो ये आपने बात की, एक तरह से इसको आप क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर है या क्या नाम दे रहे हैं?
ये नॉलेज की ट्रांसफर है कि जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, क्योंकि बदकिस्मती से अमेरिका इस वक्त जो एपिसेंटर जिसे कहते हैं वो तूफान की जो आंख है उस वो है कि सबसे ज्यादा जो मरीज हैं कोरोना के वो यहाँ पे हैं, सबसे ज्यादा डेथ यहाँ पे हुई पूरी दुनिया में से। तो इसलिए यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना वायरस के को ट्रीट कर रहे थे या देख रहे हैं, वो इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे एक्सपीरियंस्ड है पूरी दुनिया में। तो वो डॉक्टर्स जब बैठ के पाकिस्तान के डॉक्टर्स से डिस्कस करते हैं या उनके केसेस को सुनते हैं या वो सवाल करते हैं और ये जवाब देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर नॉलेज का ट्रांसफर और कोई नहीं हो सकता। तो वो ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहेगा फॉर अनदर यू नो, जब तक कि पाकिस्तान में इस चीज की बिल्कुल हो नहीं जाता कि कोरोना खत्म हो गया है, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म मौजूद रहेगा ताकि, और बल्कि अच्छा है कि मैं समझता हूँ कि आपने जो मुझे दावत दी और हम ये बात कर रहे हैं, मैं तो ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में मजीद लोगों तक ये बात पहुंचे कि ये एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, तो प्लीज ज्वाइन करें, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है ताकि वो मरीजों की जो कोरोना के मरीजों की है वो बेहतर तरीके से उनका इलाज कर सके।
तो आप इस वक्त वेबसाइट का या उस प्लेटफॉर्म का एड्रेस बता दीजिए।
जी, तो वो www.apnamerit.com apnamerit.com पे आप उसको देख सकते हैं कि उसमें कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, और जो हमारे जितने हुए ना 20 हमारे जो लाइव वेबिनार, उन सब की रिकॉर्डिंग इस वेबसाइट पे मौजूद है। तो इवन अगर आपके पास टाइम हो या किसी डॉक्टर या कोई भी जानना चाहे अपना कोरोना वायरस के बारे में, तो वो 20 घंटे समझ लें आप, 20 बल्कि समझे 30 घंटे उसमें क्वेश्चन एंड आंसर, उसमें स्पीच, उसमें पैनल डिस्कशन, वो आप जब भी टाइम हो वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ताकि आप उसको सुन के उस अपना नॉलेज में इजाफा कर सके।
वाह, तो इसके ये बड़ी बात है कि आप यहाँ की नॉलेज को, जो आपने कहा कि सबसे ज्यादा यहाँ मरीज भी सबसे ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा डॉक्टर्स भी यहाँ के एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो नॉलेज आप फ्री पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान के उन डॉक्टरों को जो कि कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और यकीनन उनको बड़ी हेल्प मिलती होगी। कोई टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की भी कोई बात होती है अपना में?
तो जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी में वो ये है कि अपना सेंट्रल में आपने शायद हमारी प्रेसिडेंट नाहिद उस्मानी का भी इंटरव्यू किया हो कि वो मुख्तलिफ जो भी चीजें पाकिस्तान में जरूरत है, मास्क और दूसरी चीजें, वेंटिलेटर की मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कुछ चाइना से काफी तादाद में मजीद वेंटिलेटर आए हैं, और उसमें जब हमने ये देखा कि वेंटिलेटर तो बहुत आ गए और उम्मीद है कि शायद इससे ज्यादा जरूरत ना पड़े, लेकिन उनको चलाने वाले मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि आईसीयू की जो स्पेशलिटी है वो अपना ही ने एक मतलब कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के साथ मिलकर 2009-2008 में शुरू की थी, लेकिन इन पिछले 10 सालों में आप समझे कि अभी मेरी एक बात हो रही थी पाकिस्तान के आईसीयू स्पेशलिस्ट से परसों कि अभी तक सिर्फ 50 लोग हैं जिनको आप आईसीयू स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, यानी सिर्फ 50 लोग हैं पूरे 220 मिलियन की आबादी में जिनको आईसीयू चलाना आता है। तो वेंटिलेटर जो है वो चलाना आईसीयू स्पेशलिस्ट का ही काम है। चले आप समझें कि इसमें 50-100 लोग और ऐड कर दें या 200 लोग और ऐड कर दें जिनको वेंटिलेटर चलाना आता है, लेकिन जो जरूरत है खुदा न खास्ता अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो वो तो शायद सैकड़ों में होगी कि जिनमें मरीज अगर वेंटिलेटर पे आ गए तो उनको वेंटिलेटर तो आ गए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने या चाइना की गवर्नमेंट ने हेल्प की या पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिए एक्स्ट्रा वेंटिलेटर तो है, लेकिन उनको चलाने वाले नहीं। तो उसमें भी अपना ने ये सोचा कि अब हम जो जनरल डॉक्टर हैं जो इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं वहां पे, लेकिन उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है आईसीयू में या वेंटिलेशन में, उनके लिए हम एक नया कोर्स शुरू करेंगे जो बेसिक वेंट मैनेजमेंट का, बल्कि हम एक्चुअली कोलैबोरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये शुरू कर दिया है आम डॉक्टरों को वेंटिलेटर चलाना, और उन्होंने हमें अप्रोच किया और हमने उनसे मीटिंग की 2 दिन पहले, और हम उनके साथ मिलके उनकी जो ऑलरेडी वो कोशिश कर रहे हैं उसको मजीद बेहतर करके, जो यहाँ पे हमारी टीम है आईसीयू स्पेशलिस्ट की, एटलीस्ट हमारे पास 30 लोग ऐसे हैं जो आईसीयू स्पेशलिस्ट हैं एंड दे वांट टू गिव बैक टू देयर कंट्री, वो अपने पाकिस्तान के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक
तो हम लोग वो प्रोग्राम, एक जिस तरह हमने ये वेबिनार शुरू किया, वो प्रोग्राम इंशाल्लाह विद इन अ वीक और टू हम शुरू करने वाले हैं।
बहुत खूब और बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तानी अमेरिकी डॉक्टरों की तंजीम बहुत कुछ कर रही है, एक अरसे से कर रही है, यहाँ अमेरिका में भी कर रही है और पाकिस्तान में भी जो कुछ इनके डॉक्टर्स कर सकते हैं वो कर रहे हैं। नॉलेज का ट्रांसफ़र हो या टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो या ज़रूरतमंदों की मदद हो या दवाइयों का कोई मसला हो, कोई बहरान हो, हर मौके पर पाकिस्तानी अमरीकी डॉक्टरों की तंजीम सामने आती है और अपनी जो फाल सरगर्मियां हैं उनकी मदद से लोगों को फायदा पहुंचाती है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर शाहिद रफीक, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू,
बहुत शुक्रिया,
थैंक यू,
थैंक यू,
अस्सलाम वालेकुम।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
और अब आखिर में एक रिपोर्ट मुदस्सर मंजर की जबानी।
कोरोना वायरस की वबा से महफूज रहने के लिए जहां घर में रहना बेहतर है, वहीं हाथों को बार बार अच्छी तरह धोना भी जरूरी है, मगर पानी ही ना हो तो हाथ कैसे धोए जाएं। अमेरिका जैसे मुल्क में भी बाज लोग पानी से महरूम हैं। ओह, बिजली फिर चली गई, पानी आया या नहीं, ओहो फिर भर के लाना पड़ेगा। ये जुमले आपने आम सुने होंगे, मगर हमारे जैसे मुल्कों में, अमेरिका में नहीं। लेकिन यकीन कीजिए, हम जो कहानी बयान करने जा रहे हैं ये अमेरिका की ही है। एक बड़ी रियासत मिशिगन के बड़े शहर डिट्रॉयट की, जहाँ कारें बनती हैं, मगर वहाँ बहुत से लोग पानी से महरूम हैं क्योंकि अपना बिल नहीं चुका सके। यकीन ना आए तो अमेरिकी नेटवर्क NBC की एरिन आइनहॉर्न की रिपोर्ट देख लीजिए। वो कहती हैं ये तो वाजे नहीं है कि अमेरिका में कितने लोग घरों में पानी से महरूम हैं, मगर सन 2016 में एक सर्वे किया गया था जिससे जाहिर हुआ था कि इस बरस अमेरिका के बड़े शहरों में 5% लोग ऐसे थे जिनके घरों में पानी की सप्लाई रोक दी गई थी, और अगर मुल्क की सतह पर देखा जाए तो ये तादाद 1.5 करोड़ लोगों को जाहिर करती है। तहाँ पब्लिक वाटर के अहदेदार कहते हैं कि बाज घरों में ऐसा सिर्फ चंद रोज़ के लिए हुआ, मगर कारें बनाने वाले शहर डिट्रॉयट में सन 2010 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हर तीन में से एक शहरी मसाइल में ज़िंदगी गुजारता है, और माली मुश्किलात के बायस अगर घरों के पाइप ठीक नहीं करवा सके तो पानी से महरूम हैं, जैसा कि वेलरिया ग्रिफिन के साथ हुआ। पिछले साल मौसम खिजा में बिल न देने और पाइप ख़राब होने की वजह से डिट्रॉयट शहर ने उनके घर में पानी की सप्लाई रोक दी। सर्दी का मौसम आया और वो गर्म पानी से भी महरूम रहीं। अब तक उनका गुजारा लोगों के अतिये में दिए पानी से हो रहा है, मगर अब क्या होगा। कोरोना वायरस की वबा में बार बार हाथ धोने की हिदायत की जा रही है। मुल्क में लाखों ऐसे लोगों की तरह जिनके पानी की सप्लाई इस साल रोक दी गई, वेलरिया के पास भी पानी नहीं है तो वो क्या करेंगी। ऐसा हमेशा नहीं था, वो एक कंपनी में बहुत अच्छी मुलाजमत कर रही थी, मगर 31 साल बाद कंपनी ने कुछ और लोगों के साथ उन्हें भी बरतरफ कर दिया। फिर ख़ानदान के कुछ लोग यके बाद दीगरे उनसे जुदा हो गए और वो मुश्किलात में घिर गईं। 25 साल से वो जिस घर में रह रही हैं इसके बिल अदा करने में उन्हें कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी, मगर वो पानी का बिल अदा नहीं कर पाईं और एक वेल्व की ख़राबी ने मुश्किल और बढ़ा दी। $400 का ख़र्चा उनकी पहुँच से बाहर था। मगर अब कोरोना वायरस से परेशान हाल लोगों के लिए मिशिगन के गवर्नर ने 9 मार्च से एक नए मनसूबे का ऐलान किया है। अब लोगों को $25 से ज़्यादा पानी का बिल नहीं आएगा और पहले के बिल भी मौखर कर दिए जाएंगे। वेलरिया के घर में पानी के पाइप की मरम्मत रजाकाराना तौर पर की जा रही है, अगरचे हुकाम ने ख़ास हालात में लोगों के पानी के कनेक्शन बहाल करने के लिए कहा है, मगर वेलरिया को पानी 2 अप्रैल से पहले नहीं मिल सकता। मोनिका लुइस पैट्रिक के एक फलाही तंजीम की सदर हैं। वो कहती हैं अमरीका जैसे मुल्क में आप तस्वुर नहीं कर सकते कि ऐसी किसी खातून से मिलें जो अपने बच्चों को नहला ना सकती हो, मगर वो ऐसी माँ को भी जानती हैं जो एक मरतबा टब में पानी भर कर अपने 3 बच्चों को उसी पानी से नहलाती हैं। दुनिया के और मुल्कों की तरह यहाँ अमेरिका में भी हुकाम कहते हैं कि पानी की कमी होती जा रही है और कंपनियों ने लागत भी बढ़ा दी है, चुनांचे लोगों को परेशानी का सामना होता है। अमेरिकन पब्लिक मीडिया के एक तजिए के मुताबिक सिर्फ डिट्रॉयट में हर शहरी औसतन $1100 सालाना पानी का बिल अदा करता है, जबकि एक अशर पहले ऐसा नहीं था। डिट्रॉयट सन 2014 में भी उस वक्त खबरों में आया था जब मिशिगन के एक मैनेजर ने कर्जों के बायस मुल्क में सबसे बड़े पैमाने पर दिवालियापन का ऐलान किया اور ڈیٹرائٹ کے تقریباً 200,000 لوگوں کا پانی بند کر دیا۔ اس اقدام پر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عہدیداروں نے بھی سرزنش کی تھی، اور امریکہ میں تو ہر گھر میں ٹھنڈے اور گرم پانی کی فراہمی شہریوں کا حق ہے۔ پانی زندگی کی علامت ہے، پانی صفائی کے لیے ضروری ہے، پانی صحت کے لیے ضروری ہے، اور پھر جب صحت پر بنا آئے اور پانی نہ ہو تو کیا کیجیے گا؟ کرونا وائرس کی اس وبا کے دنوں میں اس کا تصور بھی محال ہے۔ مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی خصوصی نشریات سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین جمیل۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔